समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। विनम्र बनो, साहसी बनो और शक्तिशाली बनो।
मुकेश, आई एम डीपली इंस्पायर्ड बाय योर वर्ड्स एंड अलाउ मी टू ऐड हियर वर्ड्स सेड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप।
जी हाँ, इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आज सवेरे कार्यक्रम में एक नई सुबह के साथ एक बार हम फिर हाजिर हैं, लेकर देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूँ मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सरबजीत कौर। सरबजीत, आपको भी मेरा नमस्कार।
वेरी गुड मॉर्निंग मुकेश एंड एन ऑसम वार्म वेलकम टू आवर लवली लिसनर्स ट्यून टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड लिसनर्स, यस, एज मुकेश जस्ट मेंशनड, वी आर बैक अगेन विद आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, wherein over the next half an hour, we shall bring you the latest in national and international news, metro city updates, and of course, at the end of the program, we shall flip the pages of history to see what makes 7th of November so, so special. So, without much ado, let's begin the program, Mukesh.
Ji haan. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में उनकी शानदार जीत पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में भारत अमरीका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीकी कांग्रेस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के प्रदर्शन के लिए भी श्री ट्रंप को बधाई दी। दोनों नेताओं ने विश्व शांति के लिए मिलकर काम करने की बात कही। बातचीत के दौरान श्री ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्यार करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व के उन पहले नेताओं में से हैं जिनसे उन्होंने जीत के बाद बातचीत की है।
Union Home Minister Amit Shah has said that the Modi government is committed to building a terror-free India with its policy of zero tolerance towards terrorism. In a social media post, Mr. Shah said, the two-day anti-terror conference beginning in New Delhi today will further enhance coordination among agencies to strengthen the country's security. The Home Minister will address the conference, which is being organized by National Investigation Agency. The conference has a key focus on fostering coordination among various stakeholders to tackle terrorism through a unified whole of the government approach.
संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमा सानी ने कहा है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रत्येक प्रगति का पृथ्वी पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है। नई दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष सम्मेलन के तीसरे संस्करण में डॉक्टर पेमा सानी ने कहा कि उपग्रह संचार यानी सैटकॉम केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि ये डिजिटल इंडिया को देश के हर घर, गांव और कोने तक पहुंचाने की दिशा में परिवर्तनकारी पहल है।
President Draupadi Murmu will visit Goa today. The President will attend the Day at Sea event. The event will demonstrate the operational capabilities of the Indian Navy combatants, including a glimpse of the flying operations from the INS Vikrant.
भारतीय रेलवे ने पिछले 36 दिन में 4,521 विशेष रेलगाड़ियां चलाकर 65 लाख यात्रियों को सेवाएं प्रदान की हैं। रेलवे छठ पूजा के मद्देनजर 8 से 11 नवंबर तक प्रतिदिन 160 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। ये रेलगाड़ियां त्योहारों के दौरान यात्रियों की अपेक्षित भीड़ को संभालने में व्यापक क्षमता सुनिश्चित करेंगी। स्थानीय मांग पूरा करने के लिए आवश्यकता के अनुसार समस्तीपुर, दानापुर और अन्य मंडलों के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियों की भी घोषणा की गई है।
The 18th edition of Film Bazaar, offering a rich variety of 208 films, will run from 20th to 24th November, alongside the 55th International Film Festival of India in Goa. According to an official press release, the viewing room will showcase films that are complete or in post-production stage, allowing filmmakers to connect with global film programmers, distributors, sales agents and investors. These include 145 feature films, 23 mid-length and 30 short films.
श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कल दिल्ली में श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को और बेहतर बनाने के बारे में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ मांडविया ने कहा कि श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल में सुधार का उद्देश्य उसकी दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना और उसे उपयोग में आसान बनाना है। इस बीच निर्वाचन आयोग की एजेंसियों ने महाराष्ट्र, झारखंड और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव और कुछ सीटों के उपचुनाव के दौरान 558 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी, निशुल्क बांटी जाने वाली वस्तुएं, शराब, अन्य मादक पदार्थ तथा बहुमूल्य धातुएं बरामद की हैं। आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र में की गई कार्रवाइयों के दौरान करीब 280 करोड़ रुपए और झारखंड में 158 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी और अन्य वस्तुएं जब्त की गई हैं। आयोग के अनुसार इन दो राज्यों में 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 3 गुना अधिक मूल्य की सामग्री बरामद की गई है। और श्रोताओं, आज सवेरे में वक्त है मेट्रो न्यूज का, तो सबसे पहले चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के समाचार।
यस मुकेश, लेट्स बिगिन विद द बज फ्रॉम चेन्नई। द फर्स्ट वेलबींग सर्वे एट आईआईटी मद्रास हैज रिवील्ड दैट 1 in 3 फ्रेशर्स नीड्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्प। द रिजल्ट्स शो 3% ऑफ द 2800 न्यूली एनरोल्ड अंडरग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड पीएचडी स्कॉलर्स नीड इमीडिएट इंटरवेंशन। IITM, which took up the survey to identify vulnerable students at an early stage and prevent suicides on campus, found that 2% freshers are deeply impacted by past trauma, while 17% said they are marginally affected by trauma. Satyanarayanan N. Gumadi, the dean, said that various programs including stress management, coping skills, self-awareness workshops, behavioral skills training, resilience building workshops and financial literacy are being planned by the institution. Indian Ambassador Sri Vikram Kumar inaugurated the pavilion of the Tamil Nadu Tourism Development Corporation at the World Travel Market held at London. The pavilion displays the special features of the state, historical monuments, photos of archaeologically important places, and also recent landmark events held at the state. And Mukesh, before I move on to Bengaluru, would you like to update the listeners about the news from Mumbai?
Yes. ब्रहन मुंबई नगर पालिका परिषद ने सभी निजी क्षेत्र की कंपनियों, निगमों, उपक्रमों, औद्योगिक निकायों, व्यापार संगठनों और अन्य सभी प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों को 20 नवंबर को राज्य विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए छुट्टी देने के निर्देश दिए हैं। बीएमसी प्रमुख भूषण गंगरानी ने कहा कि जो लोग पूरे दिन की छुट्टी नहीं दे सकते हैं उन्हें चुनाव अधिकारी की पूर्व अनुमति के बाद ही कम से कम 4 घंटे की छूट देनी होगी। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इस छुट्टी के बदले संबंधित व्यक्ति के वेतन में कटौती नहीं होगी। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित नियोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जाने यानी केवाईसी मानदंडों में बदलाव की घोषणा की है ताकि उन्हें धन शोधन निवारण नियमों में हाल में किए गए संशोधनों के साथ संरेखित किया जा सके। इसके अनुसार यदि कोई मौजूदा केवाईसी अनुपालक ग्राहक उसी बैंक से दूसरा खाता खोलना चाहता है या कोई अन्य उत्पाद या सेवा प्राप्त करना चाहता है तो उन्हें अब ग्राहक की पहचान के संबंध में नए ग्राहक परिश्रम प्रक्रिया के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।
And Mukesh, it would not be an exaggeration to say that metro today is the lifeline of our cities.
Bilkul.
Do you agree with that?
Ji.
So we have some news on this from Bengaluru. Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar has announced today that 175 kilometers of new metro lines will be operational by 2026 in Bengaluru. By next year, 30 kilometers of metro lines will be operational. Addressing media persons in the city, he said that the first two phases of the metro are under completion and the central government has approved the third phase. He informed that 1,130 crore rupees is paid for the new train sets. He added that an agreement is signed with the Indian Railways to jointly develop a pedestrian passway at Yashwantpur Railway Station and a pedestrian skywalk at Manjunath Nagar Metro Station. An underpass is being planned at Chikka Bidarkulu in association with the National Highways Authority of India. Another underpass is being planned at Madhavarva Metro Station. Those commuting from Tumkuru to Bengaluru can park their vehicles at BIEC ground and travel to their destination in the city by using the metro line nearby. the chairperson of Joint Parliamentary Committee on Waqf Amendment Bill, Jagdambika Pal, will visit Hubli, Vijaypura and Belagavi in Karnataka tomorrow to verify state Waqf Board claims on lands belonging to farmers. He will be accompanied by MP and JPC member Tejasvi Surya. During the visit, the committee chairman will interact with the farmers and various organizations representing farmers. And Mukesh, are you updating the listeners about Kolkata then?
Ji haan, Kolkata ki khabrein batate hain apne shrotaon ko. Aur Sarabjit, छठ पूजा जो है वो आज छठ पूजा का तीसरा दिन है और आज शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा.
Absolutely.
तो पश्चिम बंगाल में छठ पूजा के लिए सभी नदी घाटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कोलकाता समेत कई जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. नगर निगमों और प्रशासन ने नदी घाटों और अन्य जल निकायों पर साफ सफाई और प्रदूषण रोधी उपाय किए हैं. और सरबजीत, दिल्ली में भी छठ पूजा जो है बड़े ही आस्था के साथ मनाई जा रही है.
बिल्कुल.
और लोक आस्था के महापर्व छठ को दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. छठ पर्व के तीसरे दिन आज श्रद्धालु डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे. कल सवेरे श्रद्धालु उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और इसी के साथ छठ पूजा का समापन हो जाएगा. दिल्ली की ही अन्य खबरों में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल दिल्ली के चाणक्यपुरी में नवनिर्मित उत्तराखंड राज अतिथि गृह उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया. इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि पहाड़ी शैली में निर्मित ये भवन प्रदेश की अद्वितीय कला, वास्तुकला और संस्कृति का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि इस भवन के बनने से राष्ट्रीय राजधानी आने वाले प्रदेशवासियों को ठहरने की उचित सुविधा मिलेगी और उन्हें घर जैसा अनुभव मिलेगा. दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना नदी के तट पर छठ पूजा की अनुमति मांगने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. जनहित याचिका में यमुना नदी के तट पर छठ मनाने पर सार्वजनिक प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली उच्च न्यायालय के गीता कॉलोनी स्थित यमुना नदी तट पर श्रद्धालुओं को डुबकी लगाने की अनुमति नहीं देने के निर्णय को सही बताया है. उन्होंने दिल्ली सरकार पर शहरवासियों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. श्री यादव ने कहा कि आतिशी सरकार ने यमुना में बढ़ते अमोनिया के स्तर को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया. श्री यादव ने दिल्ली सरकार के 1000 कृत्रिम घाट बनाने के दावे को भी खोखला बताया. भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर यमुना नदी की सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने यमुना को साफ करने के नाम पर 8500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है. और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 352 तक पहुंच गया है. दिल्ली के कई हिस्सों में धुंध की परत छाए रहने से हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है. इसके कारण नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ रही हैं. एम्स के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर करण मदान ने मरीजों को अपने लक्षणों के प्रति जागरूक रहने और डॉक्टरों से नियमित जांच कराने की सलाह दी है. उन्होंने लोगों से बाहर न जाने और खराब वायु गुणवत्ता के संपर्क में आने से बचे रहने को कहा है. निश्चित तौर पर दिल्ली की जो हालत है काफी चिंताजनक है और लोगों को सतर्क रहने की काफी जरूरत है.
इंडीड, टाइम इंडीड टू टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. एंड लिसनर्स, आफ्टर दैट डिटेल्ड न्यूज फ्रॉम दिल्ली, लेट्स हैव अ ब्रीफ फ्रॉम हैदराबाद. तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी हैज ब्रीफ्ड गवर्नर Vijishnu Dev Verma at Rajbhavan in Hyderabad last evening about the socio-economic, educational, employment, political and caste survey which has been launched by the government across the state. He gave the governor complete details of the process being adopted in the survey. The chief minister requested the governor to bring the survey launched by the state government to the attention of the central government so that the survey could be taken into consideration during the national census, which is expected to be launched next year across the country.
Mm-hmm. तो सरबजीत, देश दुनिया के समाचार हो गए और महानगरों के भी समाचार हो गए।
बिल्कुल।
तो अब बारी आती है खेल जगत के समाचारों की। तो खेल जगत की तमाम खबरें लेकर स्टूडियो पहुंच चुके हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, आप बताएं कि आज खेल खबरों की कहां से शुरुआत करेंगे?
मुकेश, खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं टेनिस की। भारत के दिविज शरण और उनके जायली साथी डैनियल कुकीरमैन फिनलैंड के हेलसिंकी में एचपीपी ओपन के पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इस जोड़ी ने कल रात भी क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य के मेटिस वोसेल और डेनमार्क के जोहांस इंग्लसन की जोड़ी को 7-6, 7-5 से हराया। क्वार्टर फाइनल में दिविज शरण और डैनियल कुकीरमैन का मुकाबला इटली के मार्को बोर्टेलोटी और फिनलैंड के पैट्रिक निकलास साल्मिनेन की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 10:20 पर खेला जाएगा। टेनिस में ही भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और पुर्तगाल के फ्रांसिस्को कैब्राल की जोड़ी फ्रांस के मेट्स में मोस्ले ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ऋत्विक और कैब्राल की जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त मैक्सिको के सेंटियागो गोंजालेस और मेजबान फ्रांस के एंडॉर्ड रोजर वासिलिन को 7-6, 6-4 से हराया। उधर चेन्नई में 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के तीसरे दिन कल केरल, ओडिशा, पुदुचेरी और हरियाणा ने अपने अपने मुकाबले में बड़ी जीत हासिल की। पूल एफ में केरल ने जम्मू कश्मीर को 4-0 से हराया। पूल ई में ओडिशा ने राजस्थान को 11-1 की बड़ी शिकस्त दी। पूल ई के ही एक अन्य मैच में पुदुचेरी ने अरुणाचल को 7-0 से हराया। पूल बी में हरियाणा ने हिमाचल पर 12-1 की जीत हासिल की। उधर बैडमिंटन में भारत के किरण जॉर्ज आज कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में ताइवान के ची यूजेन से खेलेंगे। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 शुरू होगा। इससे पहले जॉर्ज ने कल पहले राउंड में अपने वियतनाम के प्रतिद्वंदी गुयेन हाई डोंग को कड़े मुकाबले में 15-21, 21-12, 21-15 से हराया। मुकेश, खेल खबरों में फिलहाल इतना ही।
धन्यवाद सिद्धार्थ, खेल खबर की जानकारी देने। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और सरबजीत कौर के साथ। और अब कार्यक्रम में वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का। तो सरबजीत, सबसे पहले दिल्ली के हालचाल बता दें अपने श्रोताओं को। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज का जो मौसम है आमतौर पर साफ रहेगा, कहीं कहीं प्रदूषण के कारण धुंध छाई रहेगी। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता का रुख करें तो कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और मुंबई चलते हैं तो मुंबई में भी आज आसमान साफ रहेगा। मुंबई में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो यह हुई बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। सरबजीत, आप बताएं कि चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में कैसा रहने वाला है मौसम?
यस, वेल मुकेश, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद हैवी रेन। मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम मे गो अप टू 33 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have fog or mist, and the minimum temperature was 20 degrees Celsius. Maximum may go up to 29 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky. The temperatures will hover between a minimum of 19 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज तारीख है 7 नवंबर। तो आज ही के दिन 1862 में मुगल सल्तनत के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय की रंगून में मौत हो गई थी।
7 नवंबर 1917, द बोल्शेविक पार्टी सीज्ड पावर इन रशियाज कैपिटल, स्टार्टिंग द कम्युनिस्ट अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड लीडिंग टू द फाउंडिंग ऑफ द सोवियत यूनियन।
और आज ही के दिन 1951 में जॉर्डन में संविधान पारित किया गया था।
1944, 7th November, President Franklin Delano Roosevelt was elected to an unprecedented fourth term as the US President. 1950, on this day, the Nepalese government deposed King Tribhuvan and proclaimed his four-year-old grandson, Gyanendra Bir Bikram Shah, as the new King of Nepal.
बिल्कुल, 1968 में आज ही के दिन तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था। और 1996 की बात करें तो आज ही के दिन अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मार्स ग्लोबल सर्वेयर का प्रक्षेपण किया था।
1995, ऑन दिस डे इंडिया ओपन्ड द सेकंड कॉन्सुलेट इन द यूनाइटेड किंगडम इन ग्लासगो।
और 1998 में आज ही के दिन दुनिया का सबसे बुजुर्ग अंतरिक्षयात्री जॉन ग्लेन धरती पर सुरक्षित लौटा था। और 2006 में आज ही के दिन भारत और आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक फंड बनाने पर सहमत हुए थे।
ऑन दिस डे इन द ईयर 1995 इन पुणे, Lucas Lilama set record for 10,000 meters, and in the year 2013, on this day, Twitter became a public company and shares of this company were put on sale for the public.
और अब याद करते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि है. इस क्रम में सबसे पहले भारत में हरित क्रांति के पिता कहे जाने वाले चिदंबरम सुब्रमण्यम की आज पुण्यतिथि है. जब भारत को आजादी प्राप्त हुई उस समय देश में खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति बड़ी शोचनीय थी. कई स्थानों पर अकाल पड़े. बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अनेक लोग भुखमरी के शिकार हुए और काल का ग्रास बन गए. जब सी सुब्रमण्यम को केंद्र में कृषि मंत्री बनाया गया तब उन्होंने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की. उनकी बेहतर कृषि नीतियों के कारण ही 1972 में देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न का उत्पादन हुआ. सी सुब्रमण्यम की नीतियों और कुशल प्रयासों से ही आज देश खाद्यान्न उत्पादन में पूर्ण रूप से निर्भर हो चुका है.
And Mukesh, there's another angle to this great man, and that is that he was also an independence activist. He was awarded the Bharat Ratna, as you have talked about the Green Revolution. For this effort, he was awarded the Bharat Ratna. And then C. Subramaniam became an active member of the civil disobedience movement against the British during his college days itself. And in the year 1942, Subramaniam was imprisoned during the Quit India movement. Later, Subramaniam was elected to the Constituent Assembly and he also contributed in the framing of the Constitution of India.
बिल्कुल. और भारत के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त की आज पुण्यतिथि है. एक अध्यापक के रूप में उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया था. उन्होंने वर्ष 1886 में कांग्रेस के दूसरे कोलकाता अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था.
एंड आर यू ऑल्सो टेलिंग अस समथिंग अबाउट ताराचेरियन मुकेश?
बिल्कुल. भारत की समाज सेविका ताराचेरियन की आज पुण्यतिथि है. वो मद्रास की पहली महिला थीं जो मेयर बनी. मेयर के रूप में उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा प्रणाली में सरलता और सानुकूलता का समावेश कराया तथा उनके स्वास्थ्य के लिए दोपहर में पोषक तत्वों से पूर्ण स्वल्पाहार की व्यवस्था कराई थी.
And Mukesh, while you were working on the script in the newsroom, I could hear that you are getting a bhajan for our listeners. Is there something to that effect? Am I correct?
जी हाँ, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, संगीतकार, भक्ति संगीत तथा भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्वान जितेंद्र अभिषेकी की आज पुण्यतिथि है. उन्हें मराठी थिएटर संगीत के उद्धारकर्ता के रूप में जाना जाता है. संस्कृत साहित्य में डिग्री प्राप्त करने के बाद जितेंद्र अभिषेकी एक संक्षिप्त अवधि के लिए ऑल इंडिया रेडियो मुंबई में शामिल हो गए थे जहां वे कई संगीतकारों के संपर्क में आए थे. तो क्यों ना उनका एक गाया हुआ सुन लेते हैं शास्त्रीय गायन.
बिल्कुल.
अबीर गुलाल उधड़ी तरंग, अबीर गुलाल उधड़ी तरंग, अबीर गुलाल उधड़ित रंग रंग रंग, अबीर गुलाल उधड़ित रंग. नाथा घर नाचे माथा सखा पांडुरंग, नाथा घर नाचे माथा.
Mukesh, awesome. That was a lovely devotional piece. And I also saw in your list another name, Bipin Chandrapal.
जी हाँ, आज उनकी जयंती है. उनका नाम भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में क्रांतिकारी विचारकों के जनक के रूप में लिया जाता है जो अंग्रेजों की चूलें हिला देने वाली लाल बाल पाल तिकड़ी का हिस्सा थे. वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक रहे पाल एक बड़े समाज सुधारक भी थे. उन्होंने परिवार के विरोध के बावजूद एक विधवा से शादी की थी. बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी और 1907 में ब्रिटानिया हुकूमत द्वारा चलाए गए दमन के समय पाल इंग्लैंड चले गए थे.
And Mukesh, let's touch on some foreign personalities now.
जी.
Carlo Cesari is the name, first name in fact in my list. Today is Carlo's birth anniversary. An Italian composer of operas, concertos and instrumental duets, including mandolin duets and a concerto for mandolin. Cesari worked in the transitional period between the Barbique and classical eras. We have this musical piece for you. Listeners, we hope you enjoyed this piece. And moving on further, we are also remembering today William Stukeley. He was an English antiquarian, physician and Anglican clergyman. He had a significant influence on the development of archaeology. He pioneered the scholarly investigation of the prehistoric monuments of Stonehenge and Avebury in Wiltshire. William published over 20 books on archaeology and other subjects during his lifetime.
बिल्कुल, और हम याद कर रहे हैं चंद्रशेखर वेंकट रामन को. वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक संसार में भारत को ख्याति दिलाई. प्राचीन भारत में विज्ञान की उपलब्धियां थीं, जैसे शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज, पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के बारे में तथा आयुर्वेद के फार्मूले इत्यादि. लेकिन पूर्ण रूप से विज्ञान के प्रयोगात्मक कोण में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी और रामन ने उस खोए रास्ते की खोज की और नियमों का प्रतिपादन किया जिनसे स्वतंत्र भारत के विकास और प्रगति का रास्ता खुल गया. रामन ने स्वाधीन भारत में विज्ञान के अध्ययन और शोध को जो प्रोत्साहन दिया उसका अनुमान कर पाना कठिन है.
एंड आपने रास्तों की बात की मुकेश, सो वी आर ऑल्सो पेइंग ट्रिब्यूट्स टू जेम्स कुक. टुडे इज हिज बर्थ एनिवर्सरी. ही वाज अ ब्रिटिश एक्सप्लोरर, कार्टोग्राफर एंड नेवल ऑफिसर, फेमस फॉर हिज थ्री वॉयजेस बिटवीन 1768 एंड 1779 इन द पैसिफिक ओशन एंड टू न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इन पर्टिकुलर. Cook made detailed maps of Newfoundland prior to making three voyages to the Pacific, during which he achieved the first recorded European contact with the eastern coastline of Australia and the Hawaiian Islands and the first recorded circumnavigation of New Zealand.
बिल्कुल, और आज जन्मदिन है. फिल्म दुनिया में अपनी अलग ही अदाकारी के लिए मशहूर दक्षिण भारतीय फिल्मों के सबसे ज्यादा अनुभवी अभिनेता कमल हसन की. कमल हसन को दिए गए सम्मानों की सूची बहुत लंबी है. इन्हें 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, 13 दक्षिण भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड, 2 फिल्म फेयर अवार्ड और 3 नंदी अवार्ड दिए गए हैं. तो सबसे पहले उनकी एक फिल्म सागर का गाना सुना जाए.
जी,
सच मेरे यार है, बस वही प्यार है.
पिछले 4 दशक की लंबे सिने करियर में कमल हसन ने कई सुपरहिट फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है. बहुमुखी प्रतिभा के धनी कमल हसन ने न केवल अभिनय की प्रतिभा से बल्कि गायकी, निर्माण, निर्देशन, पटकथा, लेखक, गीतकार, नृत्य निर्देशक, पटकथा और गीत लेखन तथा नृत्य निर्देशक से भी सिने प्रेमियों का दीवाना बनाया है. तो उनकी एक और फिल्म एक दूजे के लिए गाना सुनते हैं.
I don't know what you say, I don't know what you say, but I want to dance and play, but I want to dance and play. I want to play the game of love, I want you in the name of love, I want to play the game of love, I want you in the name of love.
Hey, come here.
Not here, there.
And Mukesh, Kamal Hassan is his professional name. In fact, his name is Parthasarathi Srinivasan.
Ji.
And you have some more songs for us?
जी हाँ, बिल्कुल. और अगर कमल हसन के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में अब तक लगभग 200 फिल्मों में अपना अभिनय किया है और हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है. 1981 में कमल हसन ने निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा और राजा पारवई का निर्माण किया. तो उनकी एक और फिल्म हम सनम तेरी कसम का ये गाना सुनते हैं.
हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम. सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, सनम.
और कमल हसन की फिल्मों की अगर बात करें तो उनकी हास्य प्रधान मूक फिल्म पुष्पक थी जिसमें उन्होंने अमला के साथ काम किया था और चाची 420 में भी उनकी अदाकारी काफी प्रसिद्ध हुई थी. तो एक और उनका गाना सुनते हैं.
सुरमई अखियों में ननम नायक सपना दे जा रे, बिंदिया के उड़ते.
तो घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाए, तो अनुमति दें मुकेश कुमार और सरबजीत कौर को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
लिसनर्स हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।
मुझको कोई अपना दे जा।